अरे तो आज हम जो श्रीमद् भागवत का दक्ष उपाख्यान की चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी हम चर्चा तीन विभागों में करेंगे। सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत का क्या महत्व है, श्रीमद् भागवत में इस लीला का क्या महत्व है, और इस श्लोक और उस तात्पर्य का इस लीला में क्या महत्व है, इस तरह से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जीव गोस्वामी पाद ने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, इसका नाम है शत संदर्भ। तो इन शत संदर्भों में जीव गोस्वामी पाद, उसका पहला संदर्भ है, छह संदर्भ है, उसमें से पहला है तत्व संदर्भ। तत्व संदर्भ में वो वैदिक शास्त्रों में अनेक ग्रंथ है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे श्रेष्ठ कौन सा ग्रंथ है, उसका विश्लेषण करते हैं। और तभी तात्पर्य लिंग, तात्पर्य लिंग का मतलब तात्पर्य समझने के लिए क्या क्या लक्षण है उसका वर्णन करते हैं। और वो कहते हैं कि शिव पुराण है, देवी भागवत है, मत्स्य पुराण है, कूर्म पुराण है, ऋग्वेद है, चतुर्षोत्तरोपनिषद है, इतने सारे ग्रंथ है, उनमें से कौन सा ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है। तो बोलते हैं कि अलग अलग लोग अपना अपना राय बताएंगे। कोई जो शिव भक्त है बोलेगा शिव पुराण सर्वश्रेष्ठ है, देवी भक्त है बोलेगा वो देवी भागवत सर्वश्रेष्ठ है, विष्णु भक्त है बोलेगा विष्णु पुराण सर्वश्रेष्ठ है। तो हम किस किस मापदंड से फैसला करेंगे कि कौन सा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है। तो बोलते हैं कि सरल हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। आप देखिए कि किस प्रकार के सवाल उस ग्रंथ में किए जा रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा हो रही है। अगर हम शिव पुराण देखते हैं तो उसमें शिव जी की महिमा हमें बताई है, देवी भागवत में देखेंगे तो देवी की महिमा बताई है। पर अगर हम भागवतम देखते हैं तो भागवतम जो पहला श्लोक है उसमें कोई भी देवी देवता या कोई भगवान का भी नाम नहीं आता है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है वो एक इन्वोकेशन प्रारंभ का मंत्र है, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक नहीं है। पहला श्लोक जन्माद्यस्य अन्वयंतरपश्चात्तेषु अभ्यक्तव्य स्वराट, कि जो परम सत्य संपूर्ण ब्रह्मांड का स्रोत है मुझे उसके बारे में ध्यान करना है। और उस परम सत्य के बारे में ध्यान करने से क्या होता है, तापत्रयोन्मूलनम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम, जो वास्तव वस्तु है उसका ज्ञान होता है और जो ताप है उसका उन्मूलन हो जाता है। तो हम भागवत की शुरुआत में देखते हैं तो भागवत क्या बोलते हैं, मुझे परम सत्य के बारे में चिंतन करना है। वो परम सत्य कौन है वो बता नहीं रहे हैं। इस तरह से अगर हम देखते हैं कि भागवतों के बीज जो है वो प्रश्न है, शौनक आदि ऋषि जो प्रश्न पूछ रहे हैं सुधर गोस्वामी, तो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि कौन से भगवान सर्वश्रेष्ठ है, पूछ रहे कि इतने सारे शास्त्र है उनमें से सबसे उनका मर्म क्या है, इतने सारे धर्म है उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। तो जो है यूनिवर्सल विश्वव्यापी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और परीक्षित महाराज जब जो दूसरा भी आता है भागवत का, वो है परीक्षित महाराज का सवाल शुद्ध गोस्वामी से। और परीक्षित महाराज भी ये नहीं पूछे कृष्ण की महिमा बताओ, वो बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति मृत्यु के शिया में है तो उसका कर्तव्य क्या है। तो भागवतम हमें परम सत्य जो सब लोगों के लिए ये लागू है ऐसे सत्य के बारे में बता रहा है। तो उस परम सत्य से शुरुआत करके धीरे धीरे हमको बताता है कैसे वो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। ऐसे मौसम है उनमें कृष्ण का वर्णन आता है कई जगह पे, पर भगवान विष्णु और उनके अवतारों का वर्णन आता है। दशम स्कंद है उसमें भागवतम का हृदय है, अब मतलब पुराण जो मंगा आती है उसमें श्रीमद् भागवतम के मुख से उसका तुलना की गई है। तो वो सत्य है, पर जो भागवतम का भक्ति का भाव है, भावना का स्तर, अगर हम भावनाओं को देखते हैं तो भावनाओं का जो स्तर जगह होती है वो हृदय है। तो सबसे अधिक भावनाएं दशम स्कंद में दिखाई देती है, इसलिए भागवतों के दशम स्तंभ को हृदय से तुलना की गई है। पर जो व्यक्ति होता है उसका दिखने में सौंदर्य चेहरे में दिखता है। तो इसीलिए अगर श्रीमद् भागवतम को हम एक व्यक्ति से तुलना करते हैं तो उसका सबसे सुंदर भाव जो है वो दशम स्कंद है। तो दोनों तुलनाओं से श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद महान स्कंद है। भागवत में 335 अध्याय हैं, उसमें से 90 अध्याय दशम स्कंद में ही है। तो एक तिहाई जो भागवतम का हिस्सा है वो दशम स्कंद में है। और जो भी उसको पहले बताया जा रहा है वो दशम स्कंद के लिए हमें तैयार करा रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने इसको अमल पुराण बताया है, क्योंकि ज्ञान कर्म योग इनका कोई मल नहीं है इसमें। एक तो मल है अधर्म का, काम क्रोध लोभ मोह मद्वात्सर्य का, वो मल नहीं है। और यहां तक कि जो पुण्य कर्म है उनका भी मल नहीं है, केवल शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति इसका सार है और इसका निष्कर्ष है, एसेंस एंड कंक्लूजन, सार है और निष्कर्ष है। पर श्रीमद् भागवत हमें जटिल तत्व बता रहा है, जैसे कि एक तो एक और हो गए असुर, दूसरे होकर हो गए भक्त। जैसे भगवान गीता में बताते हैं 16वें अध्याय में कैसे कि दो प्रकार के लोग हैं, असुर है और देव है या सुर है। तो पर अधिकांश जीवन में जब हम होते हैं तो ये जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, सफेद और काला, इतना भेद स्पष्ट नहीं होता है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कुछ ऐसे व्यक्ति है जो जैसे असुर है, हिरण्यकशिपु है, हिरण्याक्ष है, कंस है, उनका चरित्र हम देखते पूरा काला है। और कुछ महान भक्त है उनका चरित्र जो है पूरा सफेद है। पर कई बार जो श्वेत और श्याम, ये जो भेद है वो व्यावहारिक जीवन में उसमें बहुत जटिलता आती है, तो वो दर्शाता है भागवत। ऐसे कि वृत्रासुर एक असुर है पर असुर होके महान भक्त है। तो मतलब सिर्फ कोई असुर शरीर में है तो उसका मतलब है असुरी प्रवृत्ति का है, जरूरी नहीं है। और ठीक उसी तरह से इस लीला में हम देख रहे हैं कि दक्ष प्रजापति ये एक महान हस्ती है, ये देवताओं में से एक गणना है, और वो अभी क्या हुआ है, वो क्रोध के वश में आ गए, वो गर्व के कारण क्रोध में आ गए और वो बहुत बुरा कार्य कर गए। तो भागवत दर्शाता है हमें कि कैसे कभी कभी जो असुर भक्ति होता है उसके हृदय में भक्ति हो सकती है, और जो सुर है, जो भक्त है, उसके हृदय में भी काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य आ सकता है। और फिर ऐसे परिस्थिति में हमें कैसे उसका सामना करना चाहिए। तो हम हमारे जीवन में भी हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, पर जो अनर्थ है काम क्रोध लोभ मद, इन सब हम पे प्रभाव हो सकता है। और हम वैष्णव के संग रहते हैं तो कभी कभी हम देख सकते हैं कि दूसरे वैष्णव में यह प्रभाव हो सकता है। तो ऐसे नहीं है किसी किसी वैष्णव में कभी काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य का प्रभाव हो गया तो हम उसको असुरी प्रवृत्ति का मानना चाहिए, वो भक्त ही है पर कुछ अनर्थों का प्रभाव हो गया। तो ये भागवत दिखाता है कि जो अभी प्रहलाद महाराज हम देखेंगे तो शुद्ध भक्त है, उनके चरित्र में कोई खोट है ही नहीं, पर वो शुद्ध भक्त बनना सबका उद्देश्य है, पर सब उस स्तर पर नहीं है। तो जो उस स्तर पर नहीं है वो ये भक्ति करते हैं, तो अगर वो गलतियां करते हैं तो क्या होता है और गलतियों का कैसे हमें सामना करना चाहिए, वो इस लीला में बता रहे हैं। तो अभी विस्तारित कथा है ये, और आप सब पिछले कई आपको से सुन रहे हो तो मैं इस चर्चा कथा का पूरी चर्चा यहां पर नहीं करूंगा। पर ये जो कथा है इसका ये महत्वपूर्ण हमें लीला से सीख मिलती है कि अगर कोई भक्त प्रवृत्ति का भी व्यक्ति हो वो अगर अनर्थों के प्रभाव में आता है तो उसको भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे इंद्र जो था महान भक्त है पर वो जब गर्व से प्रभावित हो गए तो उनको भी उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो इसी तरह से दक्ष प्रजापति महान हस्ती है और कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी शास्त्रों को जानते हैं और उनको जो विश्व की जो सारे विश्व के मैनेजमेंट है उसने एक महत्वपूर्ण पद है। तो जो प्रजापति है उसका मतलब है कि उसको सारे प्रजा को उत्पन्न करना है, और प्रजा को उत्पन्न करना मतलब केवल पुरुष स्त्री के संग से प्रजा उत्पन्न करना ऐसी बात नहीं है। और जो भगवान की योजना से प्रजा उत्पन्न करना है उसका मतलब है चरित्रशील प्रजा होनी चाहिए, और उसके लिए वो जो व्यक्ति है उसको भी चरित्र होना चाहिए। तो दक्ष प्रजापति अगर उसको प्रजापति बनाया गया है तो वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो महान हस्ती है, पर वो भी कभी गर्व से प्रभावित हो सकते हैं। तो इस श्लोक में अभी दक्ष प्रजापति की प्रार्थनाएं शुरू कर रहे हैं। तो अभी सारा विध्वंस हो चुका है और देखा कि उन्होंने शिवजी के प्रति अपराध किया, उससे क्या परिणाम हो गया उनका। तो अभी उनको पश्चाताप हो रहा है और पश्चाताप होके अभी वे तो परिवर्तन कर रहे हैं अपने जीवन का, पर उनको स्मरण आ रहा है अपनी पुत्री, इसका शिवजी की भार्या जो थी सती उनका, और उनकी जो गलती हुई दक्ष प्रजापति की, उससे उसके कारण जो सती है उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और सोच रहे कि मैं अभी प्रायश्चित कर रहा हूं, पर प्रायश्चित करने से सती पुनः पुनः प्राप्त नहीं होने वाली मुझे। वो चली गई, तो हमेशा के लिए चली गई। उसे उन्हें बहुत दुख हो रहा है, ग्लानी हो रही है, पर फिर वो देख रहे हैं शिव जी मेरे सामने है, तो उनको मुझे प्रार्थना अर्पण करनी है। तो प्रार्थना अर्पण शुरू करते हैं, अर्पण करना शुरू करते हैं। तो जब भक्त कोई प्रार्थना अर्पण करता है तो भक्त और अभक्त में क्या फर्क होता है? कि कई फर्क होते हैं, पर खास करके हम वो फर्क देखते हैं जब कोई गलती होती है किसी से। हम देखते हैं कि जो अभक्त होता है वो हमेशा दूसरों की गलती ढूंढने में बहुत निपुण होता है, और खुद की गलती को नकारने में बड़ा निपुण होता है। कि कोई गलती दूसरे की गलती करता है तो हजारों गलतियां ढूंढ सकते हैं। वास्तव में क्या होता है, जो भौतिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसको दूसरों की गलतियां ढूंढने में बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि वो क्या सोचता है कि देखो ये इतना कार्य कर रहा है तो मैं उसके कार्य में गलती ढूंढ सकता हूं, मैं कितना बुद्धिमान हूं। मैं भक्ति में आने के पहले, वास्तव में भक्ति में अभी तक नहीं आया हूं, मैं आने का प्रयास कर रहा हूं, पर इस कौन से परिचय होने के पहले जब मेरा एक मित्र था, तो उसकी क्या रुचि थी कि कोई भी किताब प्रसिद्ध हो जाए तो वो किताब खरीदता था, पूरा किताब पढ़ता था, और वो किताब में गलतियां ढूंढता था, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, पंक्चुएशन मिस्टेक्स, क्या प्रूफ रीडिंग करता था, किताब में गलतियां ढूंढता था, और वो अमेरिका का भी ऑथर हो, अमेरिका के लेखक का पत्ता निकाल के पोस्ट से उसको भेजता था, देखो तुम्हारी सब किताबों में गलती है। तो उसको उसमें बड़ा आनंद मिलता था। पर बाद में जब प्रभुपाद जी के ग्रंथ दिए मैंने उसको, तो पूरा ग्रंथ पढ़ के निकाला तो उसको कहीं भी कोई गलती मिली ही नहीं। बोले जो जयदेव महाराज, जो हमारे बीबीटी के एडिटर है जयदेव महाराज, वो बता रहे थे हमें कि जब वो प्रूफ रीडिंग प्रभुपाद जी को बोले थे कि वन मिस्टेक किल्स द बुक, अगर आप एक गलती करते हैं किताब में तो उससे क्या होता है कि आपके आपका जो प्रतिमा है, जो रीडर है, जो पढ़ने वाले, उसके मन में पूरी खत्म हो जाती है, गलती आई होगी। तो बता रहे थे कि अगर एक भागवतम को छापना है तो कम से कम वो 50 बार उसका प्रूफरीडिंग करते थे, 50 बार एक भागवतम छापने के लिए एक बोनी भर के पेपर का प्रूफरीडिंग होता था और फिर निकाल देते। तो भक्त जो होता है अपनी सेवा हमेशा बहुत अच्छे से करने का प्रयास करता है, पर भौतिकवादी लोग क्या होते हैं, वो सोचते हैं हमेशा कि कैसे मैं गलतियां ढूंढ उसको, और उसमें वो आनंद देते हैं और खुद की गलतियां हमेशा टाल लेते हैं। तो इसके विपरीत जो भक्त होता है वो, जैसे हम जानते हैं महाभारत का वर्णन आता है, जब दुर्योधन को पूछा जाता है कि तुमने दुर्योधन को पूछा था तुमने इतना बदतमीज कार्य क्यों किया, तो दुर्योधन बोलता है कि मैंने बहुत विचार किया है, और बहुत विचार करने के बाद मुझे खुद में कोई भी दोष नहीं दिखाई दे रहा है, आप सब लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं इसीलिए मुझ निर्दोष व्यक्ति को आप दोषी मान रहे हैं। तो अभी दुर्योधन ने क्या क्या अत्याचार नहीं किया, और वो सोच क्या रहा है, मैंने कोई गलती नहीं की। इसके विपरीत युधिष्ठिर महाराज क्या सोच रहे हैं कि वास्तव में मैंने ही गलती की, मैंने गलती की है। भीम जब जंगल में होता है वो, तो भीम बोलते हैं कि हम यहां पे असहाय लोग हैं, जैसे क्यों बैठे हैं, हम क्षत्रिय है, हम आक्रमण करके हम जीत लेंगे और पुनः राज्य को प्राप्त कर लेंगे। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि वास्तव में हमने वो जो शर्त है उसका पालन किया है, हमने वो शर्त स्वीकार की है, हमें पालन करना चाहिए, हम ही हारे हुए हैं। भी बड़े खुश हो जाते होते, हम नहीं हारे, तुम हारे हो। तो जब वो हाथों से जुआ खेल रहे थे, द्रौपदी को दांव लगा रहे थे, तो अगर अर्जुन नहीं रोका था मैं तुम्हारे हाथ जला देता हूं। तो भीम बड़े क्रोध हो जाते हैं, और यह सुन के युधिष्ठिर कुछ भी नहीं बोलते, तो तुरंत अर्जुन और द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर महाराज के पक्ष में आते हैं उनका सामर्थ्य करने के लिए। जो भक्त होते हैं वो कभी खुद में दोष वो दूसरों में दोष नहीं देखता है, खुद में दोष देखता है, खुद का दोष वो डिनाय नहीं करता है। माधवेंद्रपुरी अभी और छोटा सा दोष था, क्या दोष था कि भोग से जा रहा था तब वो सोच रहे थे कि क्या अगर
अगर ये खीर अगर मैं ये खीर इतनी स्वादिष्ट दिख रही है, अगर आनंद नाम जपों में वर्णन आता है कि जो प्रसाद होता है उसके चार गुण होने चाहिए, बोलते हैं कि दिखने के लिए बड़ा आकर्षक होना चाहिए। सबसे पहले बोलते हैं दिखने से पहले हमको उसके सुगंध से आकर्षण होना चाहिए। सुगंध के बाद में जब दिखेगा तो दिखने के लिए बड़ा सुंदर होना चाहिए, और फिर जब हाथ से स्पर्श करेंगे तो हाथ से स्पर्श करेंगे तो बड़ा रसीला और मुलायम होना चाहिए, और फिर जब हम जीवा में डालेंगे तो आखिरी है प्रसाद का तो बड़ा स्वादिष्ट होना चाहिए। तो जब माधवेंद्रपुर ने देखा कि खीर इतनी स्वादिष्ट लग रही है तो मैं अगर जान सकूंगा खीर कैसे बनानी है तो मैं मेरे भोपाल जी ने खीर बना लूंगा। और फिर वो सोचेगा कैसे पता चलेगा मुझे खीर कैसे बनानी है, तो अगर मैं चख लूंगा तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि कैसे बनाई है, क्या क्या डाला है इसमें, वो मैं समझ जाऊंगा। और फिर वो सोचना है कितना मैं पापी हूं कि अभी भगवान ने भोग ले लिया है और मैं खुद चखने का सोच रहा हूं। वास्तव में अभी वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए चखाने जाते थे, भगवान की सेवा के लिए चखाने जाते थे, पर मुझे मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है, और वो पढ़ाई करके वहां चले गए दूर और जप करने लगे। तो अ डिवोटी कैचेस हिमसेल्फ डूइंग रॉन्ग, नॉन डिवोटी कैचेस अदर्स डूइंग रॉन्ग। जो भक्त होता है वो दूसरों को तुमने गलती की, तुमने गलती की, तुमने गलती की, भक्त होता है खुद कैसे गलती की वो देखता है। तो अभी शुरुआत में इस लीला के दक्ष प्रजापति ने गलती की, पर वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब वो शिव जी से क्रोध हो जाते हैं तो पहले क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि वास्तव में लोग सोचेंगे कि मैं ईर्ष्या या गर्व से बोल रहा हूं, पर वास्तव में मैं ईर्ष्या और गर्व से नहीं बोल रहा हूं, मैं वास्तव में धर्म का तत्व समझा रहा हूं आपको। और फिर वो बाद में शिव जी की भर्त्सना करने लगते हैं, तो वो गलती करते हैं पर स्वीकार नहीं करते, पर यहां पर अभी वो गलती स्वीकार कर रहे हैं। और गलती स्वीकार कि मैंने गलती की, मैंने बड़ी गलती की, पर आप इतने कृपालु हो कि आपने मुझे सजा देने की जगह पे मुझे मुझे आपने सजा देकर इस तरह से सजा दी ताकि मेरा हृदय बदल जाए, आप कितने कृपालु हो। तो कई बार जो शिवजी है और विष्णु है उनके अनेक गुण समान हैं। श्रील भक्त सिद्धांत श्री ठाकुर जो चैतन्य चरितामृत का तात्पर्य लिखा है उसको गौड़िया भाष्य कहते हैं, तो उसमें वर्णन करते हैं कि शिवजी और विष्णु ये वस्तुतः अभेदत्व है, वास्तव में अभेदत्व है, वो एक ही है। इसलिए हम कई जगह पे हम भागवत में वर्णन देखेंगे कि मार्कंडेय ऋषि 12वें स्कंध में वो बड़ी तपस्या कर रहे हैं और अप्सराओं के प्रलोभन से बच जाते हैं, फिर विष्णु आते हैं, विष्णु उनको आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देने के बाद कुछ समय के बाद शिवजी वहां पे आते हैं और फिर वो शिवजी के प्रति प्रार्थना अर्पण कर लेते हैं। और अगर आप देखोगे 12वें स्कंध के पांचवें छठे अध्याय में आता है कि जो जिस प्रकार की प्रार्थनाएं वे विष्णु को अर्पण कर रहे हैं उसी प्रकार की प्रार्थनाएं वे शिवजी को भी अर्पण करते हैं। तो क्या मतलब है, इसका मतलब यह नहीं कि शिवजी और विष्णु एक है, दो अलग व्यक्ति हैं, पर फिर भी तत्व में ज्यादा भेद नहीं है। इसीलिए हमारे आचार्य जन समझाते हैं कि शिवजी और विष्णु को जो है एक समझना ये अपराध है, पर उनको भिन्न समझना भी अपराध है। वास्तव में शिवजी और विष्णु में अचिंत भेदाभेद तत्व है। तो इसलिए वास्तव में कई बार हम भागवत में देखे थे शिवजी का ऐसे वर्णन होता है, इस तरह से गुणगान होता है, उनको ऐसी प्रार्थना होती है कि मान लीजिए वो ही परम सत्य हो। तो इसका वर्णन शिवजी गोस्वामी जो ब्रह्म संहिता के तात्पर्य लिखा है उसमें वर्णन करते हैं कि जो शिवजी है अलग स्तर पे वास करते हैं, अलग अलग स्तर पे। तो अभी इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी के माथे से उत्पन्न होते हैं क्रोध के कारण रुद्र, वो 11 रुद्र हैं, वो इस ब्रह्मांड में रहते हैं, वो कैलाश में रहते हैं। और फिर ये जो ब्रह्मांड में रहने वाले शिव है ये नश्वर है। जब ब्रह्मांड का लय नाश हो जाएगा तो ये शिवजी का, ये रुद्र का अंत हो जाएगा, पर ये जो रुद्र है ये एक विस्तारित रूप है सदाशिव। ये सदाशिव जो है वे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के रेखा में रहते हैं,
तो उनका जो कैलाश का वास है वो एक चौथाई आध्यात्मिक जगत में है, तीन चौथाई भौतिक जगत में है, और वो सदाशु शाश्वत है। और इसके विपरीत वैकुंठ जगत में भी एक सदाशु है, वो वास्तव में विष्णु मूर्ति है, वो जो रूप है वो विष्णु है, चार हाथ शंख चक्र गदा पद्म धरे हुए है, पर उनका नाम सदाशिव है। तो सदाशिव अगर हम विष्णु सहस्र नाम पढ़ते हैं तो उसमें सर्व सर्व शिव स्थान भूताधि, तो उसमें शिव, शिव ये एक शिव जी का नाम, ये किसका नाम है, ये विष्णु का नाम बताया गया है शिव। क्यों शिव है, विष्णु का नाम बताया, शिव मतलब जो मंगलमय है, परम मंगलमय, तो परम मंगलमय तो विष्णु है। तो मतलब अगर भागवतम में शिवजी को परम पुरुषोत्तम बताया जा रहा है तो वो किसको बताया जा रहा है, वो रुद्र को परम पुरुषोत्तम नहीं बताया जा रहा है, वो सदाशिव को परम पुरुषोत्तम नहीं बताया जा रहा है, वो जो वैकुंठ जगत में जो विष्णु के रूप है जिनका नाम सदाशिव है उनको परम पुरुषोत्तम बताया जा रहा है। स्पष्ट हो रहा है क्या बोल रहा हूं, शिवजी तीन स्तर पे है, एक भौतिक जगत में रुद्र है, दूसरे सदाशिव है, और तीसरे विष्णु मूर्ति है जो आध्यात्मिक जगत में है। तो जब भागवत में वर्णन आता है कि शिवजी परम सत्य है तो उसका मतलब वो जो विष्णु है शिवजी के रूप में वो परम सत्य है। तो माध्वाचार्य जी अपने ऋग्वेद भाष्य में ये समझाते हैं कि जो परम सत्य भगवान है, जो सभी देवी देवताओं के नाम है वो उनके लिए विशेषण है। वो जैसे एक इंग्लिश में नाउन एडजेक्टिव, नाम और विशेषण होता है, तो शिव ये एक नाम है एक व्यक्ति का, पर शिव ये एक विशेषण है विष्णु के लिए भी। तो जब अगर शिव का गुणगान हो रहा है शास्त्रों में परम सत्य के रूप में, तो वो शिव ये व्यक्ति के लिए नहीं है, वो शिव ये एक विशेषण है परम सत्य विष्णु को संबोधन करने के लिए। तो यहां पे इसलिए बता रहे कि शिव और विष्णु ये दोनों ब्राह्मणों के प्रति बड़े दयालु होते हैं। और यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, कैसे अगर कोई ब्राह्मण गलती करता है तो उसको ज्यादा सजा नहीं देनी चाहिए, और इसका उदाहरण प्रभुपाद जी अश्वत्थामा में देते हैं। तो ये एक वैदिक संस्कृति की विशेषता है, और इसको हम दोष दृष्टि से समझेंगे। दो दृष्टि से क्या है, सबसे पहले भगवान किस दृष्टि से देखते हैं और भक्त किस दृष्टि से देखता है। तो कई बार जो वैदिक शास्त्र के भाव को नहीं समझते हैं तो वो कहते हैं कि ये वैदिक शास्त्र ब्राह्मणों को बहुत, ब्राह्मणों की ओर बहुत पक्षपात करते हैं, ब्राह्मणों के लिए बहुत अनुकूल है और बाकी सब नीच जाति के लोग उनके लिए बहुत प्रतिकूल है। तो वास्तव में ऐसे नहीं है, जो जो शास्त्रों का भाव है वो समझना चाहिए। शास्त्रों का भाव क्या है कि जो वैदिक संस्कृति है वह कैसे चलती है। देखो अलग अलग धर्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, बुद्धिज्म है, और ये सब धीरे धीरे से धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमको थोड़ा मौका देते हैं। बट जो वैदिक सनातन धर्म है वो केवल एक ऐसा धर्म है जिसमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक स्ट्रक्चर और एक सिस्टम दिया है। स्ट्रक्चर मतलब एक और स्ट्रक्चर, एक ढांचा और एक पद्धति भी है। जो अगर हम इस्लाम या क्रिश्चियन में देखते हैं तो इस तरह से समाज का जो विभाजन है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास, या ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ऐसा कुछ वर्णन नहीं। आपको प्रगति कर रही है, ठीक है, आप अल्लाह की पूजा करो, आप जीसस की पूजा करो, आप जीसस का स्मरण करो, उससे प्रेम करो और आपकी प्रगति हो जाएगी। कितनी प्रगति होगी, कैसे प्रगति होगी, उसकी कोई पद्धति नहीं है। पर वैदिक शास्त्र ऐसे है कि उसमें पद्धति दी है कि आप जीवन की शुरुआत में आप एकाग्र भगवान के स्मरण, आध्यात्मिक ज्ञान जागृत करो, और फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, और इस तरह से जो है जीवन में एक ढांचा देते हैं। तो प्रगति एक व्यावहारिक सत्य बन जाता है, प्रैक्टिकल सत्य बन जाता है। ये तो सिर्फ भावना के स्तर पर रहता है कि मैं प्रगति कर रहा हूं, मैं प्रगति कर रहा हूं, तो वो भावना के स्तर पर नहीं है, एक प्रायोगिक उसको रूप देते हैं वैदिक शास्त्र। तो ये एक आश्रम के स्तर से है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वर्ण आश्रम में वर्ण जो है वो शरीर के लिए है, आश्रम जो है वो आत्मा के लिए। वर्ण जो है वो शरीर के लिए, मतलब क्या कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यूत्र ये चार जो विभाग है यह इसलिए बनाए हैं कि समाज के सब लोगों की शारीरिक जरूरतें हैं वो एक अच्छी पद्धति से उसको उसको दिया जाए, और जो आत्मा की प्रगति है उसके लिए आश्रम है। एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाते हैं तो प्रगति होती रहती है। तो जो ब्राह्मण है वो जो आध्यात्मिक प्रगति है वो ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में ब्राह्मण का गुणगान किया है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का बताते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, और फिर भगवत प्राप्ति जो अपने जीवन का ध्येय बना लेते हैं वो बहुत ही विशेष व्यक्ति है, इसीलिए उनको विशेष स्तर दे जाते हैं। तो ये कोई पक्षपात नहीं। पर दूसरी ओर से अगर हम देखते हैं तो जो ब्राह्मणों से अपेक्षा है कि क्या नियमों का पालन करना चाहिए, क्या स्तर रखने चाहिए, वो बहुत ऊंचा है। इसीलिए विष्णु भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब मिदनापुर में उनका विवाद हुआ, वो विख्यात विवाद हुआ ब्राह्मण वर्सेस वैष्णव, तभी वो ब्राह्मण पक्ष से अनेक लोग आए थे और अनेक बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित आए थे, और वो बोले थे कि ब्राह्मण कितने महान है, कितने महान है। और वो सब जो उपस्थित लोग आए थे, आजकल क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट देखने के लिए सैकड़ों हजारों करोड़ों में लोग जाते हैं, तो 150-200 साल पहले भी ऐसे पंडितों में अगर वाद विवाद होता तो लोग उसको देखने जाते थे। तो फिर सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पे आए थे और इतने सारे श्लोक को ब्राह्मण बोल रहे थे कि ब्राह्मण कितना महान है, सब आश्चर्य हो गए, इतना महान है ब्राह्मण को पता ही नहीं था। तो भक्तिदास ठाकुर का जब बोलने का मौका मिला उनको, तो उन्होंने ब्राह्मणों की महिमा के बारे में ऐसे श्लोक बताए और ब्राह्मणों को ही बता देते, अरे तुम्हारा ये तो हमारे पक्ष में, हमको लगा ये हमारे विरोध के पक्ष में है, ये हमारे पक्ष में लग रहा है। तो उन्होंने इतना गुणगान बताया ब्राह्मणों का, और फिर उन्हें रोक दिया, और फिर उन्होंने ब्राह्मण के गुण बताने का ब्राह्मण की पात्रता बनाने लगे, और ब्राह्मण की पात्रता बनाने लग गए। ब्राह्मण, ब्राह्मण की महिमा क्या है पहले बताया, पर ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण में क्या क्या गुण होने चाहिए वो जब बताने लग गए तो सब ब्राह्मणों का मुंह बंद हो गया, वो कुछ बोल नहीं पाए कि साफ दुनिया देख रही थी कि उनमें ऐसे गुण नहीं है जो आत्मनियंत्रण होना चाहिए। पर बहुत से ब्राह्मण थकित हुआ करते थे। वो तभी जब बंगाल में उस समय ये बहुत साधारण था कि जो लोग होते थे वो बाजार से आते थे तो सिर पे तिलक है, एक हाथ में बीड़ बैग है, दूसरे हाथ में मछली है। तो वो सोचते थे कि हमें और हम जब कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं तो क्या मांस भी खाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ चलता है। तो इससे अनेक गलत कार्य कर रहे थे। तो जब उन्होंने सदाचार जो था वो उसका बताया वर्णन ब्राह्मणों के बारे में, सारा वो चुप हो गए। तो शास्त्र ब्राह्मणों को बहुत सुविधा देते हैं, उनका बहुत महिमा बताते हैं, पर साथ साथ उनके गुणों का भी वर्णन करते हैं। और अब देखते हैं कि जब तक जो ब्राह्मण ब्राह्मण वैदिक शास्त्र वैदिक संस्कृति में सक्षम थे तब तक वैदिक संस्कृति का संरक्षण हुआ। जब श्रृंगी ने अपने ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग किया तो क्या हो गया, तब से पतन चालू हो गया। हम आधुनिक समाज में देखते हैं कि आजकल जो तथाकथित ब्राह्मण होते हैं वो कुछ यज्ञ करते हैं, कुछ पूजा करते हैं, पर वे जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो किसी को प्रदान नहीं करते, और उसी कारण सिर्फ लोग लगता है कुछ रीति रिवाज हमें करना है, ये सब चलते रहेगा, और लोगों को धर्म की ओर रुचि नहीं होती है। इसीलिए जो भक्त है वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं ब्राह्मण हूं, अगर मैंने कोई गलती की है तो शास्त्र में बताया कि ब्राह्मण को सजा नहीं देनी चाहिए, मुझे सजा मत दो। ये भक्त का भाव नहीं है। भक्त का भाव क्या होता है कि हमें हमेशा कोई भी सत्य है उसको दो तरह से देखना है, एक तत्वज्ञान के स्तर पर और दूसरा है भक्ति के स्तर पर। जैसे अगर कोई भक्त बीमार है, भक्त बीमार है और वो बहुत दवाइयां ले रहा है, तो हमें क्या सोचना चाहिए, वो भक्त को सोचना चाहिए कि मैंने पहले इतने बुरे कर्म किए हैं, इन बुरे कर्मों का मुझे फल मिल रहा है कि मैं बीमार हो गया। पर हमें क्या सोचना चाहिए, ये भक्त भगवान की इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, उसके अपने शरीर का देखभाल नहीं करते, इसीलिए बीमार पड़ गए, तो मुझे उनकी थोड़ी मदद करनी चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि तुमने पाप किए हैं इसलिए तुम्हें ये अभी कर्म भुगत रहे, और उसने वो जो भक्त है उसने ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं इतना सेवा कर रहा था इसके कारण मैं बीमार पड़ गया। जो भक्ति है उसमें क्या है कि हमें हमेशा इस तरह से देखना चाहिए कि किस तरह उस जिस तरह से हमारी आध्यात्मिक चेतना अनुकूल हो जाए। मतलब कोई भी घटना घटती है, अभी कुछ एक महीने पहले सुनामी हो गया, विशाल सुनामी, हजारों हजारों की संख्या में लोग जापान में उनका मृत्यु हो गई, तो अगर हम तत्व ज्ञान के स्तर पर बोलेंगे सब पापी लोग थे, अपने कर्म के कारण मर गए, तो ये तत्व ज्ञान के स्तर पर सत्य है, पर ये भक्त का भाव नहीं होता है। भक्त का भाव हमेशा करुणा में होता है। कोई भी दुख में होगा तो उसके दुख को निवारण करने की भक्त की इच्छा होती है। तो तत्व ज्ञान का एक सत्य है, पर तत्व ज्ञान का सत्य यह मतलब नहीं है कि वही हम व्यवहारिक रूप से उतारते हैं। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर को अगर कोई व्यक्ति को एड्स हो गया है, तो अभी अगर एड्स हो गया है तो समाज में बड़ी बदनामी होती है, तो डॉक्टर जब रिपोर्ट लिखते हैं तो एड्स लिखते नहीं है, कुछ कोड में लिखते हैं ताकि लोगों को पता ना चले। पर अगर किसी को एड्स हो गया है, तो एड्स उसने कोई गलत कार्य किया, अनैतिक कार्य किया, उसके कारण उसको एड्स हो गया है, तो अभी और डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बोलता है तुम बदतमीज व्यक्ति, इतना बेशर्म से कार्य किया आदमी, मर जाओ चले जाओ यहां से। और अगर वैसे डॉक्टर ऐसे बोलेगा, उसने गलत कार्य किया है, वो किया है वो सत्य है, पर इसका मतलब नहीं कि डॉक्टर उसके प्रति बेरहम हो जाए। डॉक्टर का कार्य है उसको ट्रीटमेंट। पर अगर दूसरी ओर से डॉक्टर बोले, अरे अगर मैं इसको बोलूंगा कि तुमने गलत कार्य किया, इसके अंदर कोई बीमारी होगी, तो उसके भावनाओं को छेद पहुंचेगा, सिर्फ उसको बताऊंगा ही नहीं, जो भी कर रहा है उसको करे दो, मैं उसको दवाई दे दूंगा, तो वो भी उसे नहीं। तो दो एक्सट्रीम क्या है कि अगर व्यक्ति ने गलत कार्य किया है तो गलत कार्य के लिए इसका इतना खंडन करना और उसकी कोई मदद न करना, और दूसरा कार्य है उसकी सिर्फ मदद करना और उसने जो गलत किया है उसको बताना ही। तो जो आदर्श डॉक्टर होगा करेगा दोनों करेगा, उसको दवाई भी देगा और उसको मदद भी करेगा। उसी तरह से जब हम अगर कोई दुखी है भौतिक जगत में, तो उसे कर्म कर रहे दुखी है, पर हमें किसी व्यक्ति को सहानुभूति दिखानी चाहिए। तो एक तत्वज्ञान के स्तर पे समझ है, और एक है भक्ति भावना के साथ प्रतिसाद है। कोई भी व्यक्ति आता है दुखी है, तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए, तो जब वे अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो उनकी करुणा क्या थी? वो अगर सिर्फ तत्वज्ञान के स्तर पे देख सकते, ये सब क्षेत्र यौवन लोग हैं, अस्पृश्य लोग, मैं स्पर्श भी नहीं करूंगा, तो अमेरिका जा भी नहीं सकते थे। पर प्रभुपाद जी की क्या करुणा थी, मैं 2-3 साल पहले हम कुछ भक्तों को लेकर जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए गए थे, और तभी हम जगन्नाथपुरी में गौड़िया मठ में प्रसाद लेने के लिए गए थे। तो वहां पे तभी गौड़िया मठ के सन्यासी आ गए, तो हमारे विद्यार्थियों से सन्यासी आ गए, उनकी सेवा करेंगे, तो वो प्रसाद उनके परोसने चले गए। जब प्रसाद परोसने चले गए, तो वो जो सन्यासी के जो सेवक थे, उन्होंने बोला उन लोगों को, बोला आपकी दीक्षा हुई है? दीक्षा नहीं हुई है तो आप सन्यासी को प्रसाद परोस नहीं सकते। सिर्फ सन्यासी को सिर्फ जिन्होंने दीक्षा ली है वही प्रसाद परोस सकते हैं। तो ये उनकी शुद्धता का स्तर है। तो ये शुद्धता का स्तर अच्छा है, पर प्रभुपाद जी शुद्धता के परे उनकी करुणा थी। और जो अधीक्षित भक्तों ने प्रसाद परोसने की बात तो दूर है, प्रभुपाद जी स्वयं उनके लिए प्रसाद पकाकर प्रभुपाद जी उनको प्रसाद परोसते थे। और देखिए अधीक्षित भक्त नहीं थे, ये चार नियम तोड़ने वाले लोग थे, और उतना ही नहीं उसके पहले प्रभुपाद जी क्या करते थे, न केवल प्रसाद परोसते थे, पर वो बाकी वो जो हिप्पी लोग थे उनको कुछ समझता ही नहीं था, खा के चले जाते थे, तो प्रभुपाद जी स्वयं उनके प्लेट भी धोया करते थे, वो प्लेट भी धोया करते थे। और एक बार एक भक्त ने इतना प्रसाद खा लिया कि वो उठ ही नहीं पाया, और वैसे ही बैठा रहा, वैसे ही बैठा रहा। अभी प्रभुपाद जी बात कर रहे थे काफी समय तक बात की, और फिर वो वैसे ही बैठा रहा। बाद में बातें हो गई, तो फिर प्रभुपाद जी ने सब प्लेट उठाया, प्लेट उठा ले तो उसके सारा जो नींद थी, उसके सारा नशा था, सब चला गया। ये स्वामी जी इतने बड़े पंडित है, संस्कृत श्लोक बोलते हैं, और ये हमारी प्लेट धो रहे, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, आप खुद ही प्लेट धोते हैं। उसको विश्वास नहीं हो रहा था, हाँ भगवान की सेवा है, तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? प्रभुपाद जी से मैं इसी का इंतजार कर रहा था। तो जो भक्त करुणा है, तो प्रभुपाद जी अगर सिर्फ तत्व ज्ञान के सर्वे देते, ये सब पापी लोग हैं, म्लेच्छ है, यौवन है, तो कभी भी करुणा से उनका उद्धार नहीं कर सकते। तो इसीलिए दक्ष प्रजापति बता रहे हैं कि हे ऋषि जी, मैंने बड़ी गलती की, पर आपने मुझे ठुकराया नहीं है, आपने इस तरह से मुझे सदा सिखाई है ताकि मेरे हृदय का परिवर्तन हो सके। तो कोई व्यक्ति ने बुरा कर्म भी किया है, तो उसका फल देना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उसका हृदय परिवर्तन करना हमारी जिम्मेदारी है। और प्रभुपाद जी का यही बड़ी विशेषता थी
कि वो कितने भी निचले स्तर के लोग हो उनका हृदय पर करके उनको भगवान को आकर्षित करते थे। और इस तरह से जो बहुत गरीब लोग थे उनको भी उन्होंने महान भक्त बना दिया है। यहां तो इतने महान भक्त बना दिया है कि अभी प्रभुपाद जी चले गए, प्रभुपाद जी के जो शिष्य है वो न केवल संस्था चलाई है और उसको और बढ़ाया है। प्रभुपाद जी 108 मंदिर बनाए, अभी लगभग 400-600 मंदिर सारे विश्वभर में है। और कई बार ऐसी संस्थाएं होती है कोई एक एक आचार्य होता है बहुत बड़ा होता है और वो चले जाता है तो सारा संस्था सारा वो संस्था है वो टूट जाती है। प्रभुपाद जी जब अपना शरीर त्यागने के समय पे आ गए थे तो उनको पूछा कुछ भक्तों ने, भक्तों ने पूछा, कुछ लाइफ मेंबर्स ने पूछा, स्वामी जी आपके सक्सेसर आपके बाद इस्कॉन के आचार्य कौन बने? तो प्रभुपाद जी ने बोला जो बनना चाहे वो बने। आश्चर्य, क्या मतलब जो बनना चाहे? प्रभुपाद जी बोले कि मेरे जो वारिस है वो क्या है, वो कोई इस्कॉन की प्रॉपर्टी नहीं है, वो कोई इस्कॉन की धनराशि नहीं है, मेरी वारिस है मेरी मेरे आदेश मेरे उपदेश। माई इंस्ट्रक्शंस आर माई लेगेसी, मेरी वारिस मेरे मेरे उपदेश है, आदेश है। जो इन आदेश का पालन करेगा वो मेरे मेरा सक्सेसर बन जाएगा। तो जिन भक्तों ने स्वीकार किया है वो अभी प्रभुपाद जी की कृपा से अभी वो स्वयं आचार्य बन गए, हजारों हजारों की संख्या में लोगों का भक्त बना रहे हैं। तो एक 40 वर्ष जब इस्कॉन के हो गया तभी एक 40 ईयर्स ऑफ चैंट एंड चेंज नाम का अमेरिका में किताब लिखा था और बता रहे थे कि प्रभुपाद जी की संस्था न केवल चल रही है पर विस्तारित हो रही है। और तभी उन्होंने उदाहरण दिया उस किताब में राधा गोपीनाथ मंदिर का, वो बोले कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसकी शुरुआत प्रभुपाद जी चले जाने के बाद हुई, और मतलब प्रभुपाद जी चले जाने के बाद उनके शिष्यों ने यह शुरुआत की और ये अभी इस्कॉन का सबसे बड़ा सबसे यशस्वी प्रोजेक्ट में से एक बन गया है। तो ये है, दिस इज द लिविंग परंपरा, ये जो है प्रभुपाद जी की कृपा, प्रभुपाद जी के महान शिष्यों की कृपा, हमारे गुरुवारों की कृपा, उनसे जो है परंपरा अभी भी चालू है। और आप सबने इतना शानदार मंदिर भगवान के लिए बनाया है तो यह जो भगवान की शक्ति है वो निगड़ी में भी बड़े ही जीवंत और ज्वलंत रूप में उजागर कर रहे हैं। तो आप सबके प्रति आज तो मैं आप सबकी सेवा करने के लिए मुझे आना चाहिए, प्रवचन देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, पर रघुपति प्रभु ने मुझे यही आदेश दिया था इसीलिए इतनी से अगर सेवा कर सकूं तो मैं भाग्यवान समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच।